टॉपिक पर चर्चा करेंगे. द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है गेंद अब आपके पाले में है. ये एक idiom है, मुहावरा है. इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने अपनी बाजी खेल ली, अभी जो बॉल है, गेंद है, वो अब हमारे पाले में है, हमारे कोर्ट में है. तो इसको ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि संगम युग पर बाबा आ चुका, बाबा ने सारा ज्ञान हमको दे चुका, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे मुरली सुननी है, कैसे मुरली पढ़नी है, योग कैसे करना है, भोजन पर बाबा को कैसे याद करना है, संगम युग का ज्ञान, समय का ज्ञान, ड्रामा के चक्र का ज्ञान, सत्युग का ज्ञान, दिव्य गुणों की धारणा, सब कुछ बाबा ने बता दिया. यानी कि बाबा ने गेंद अब फेंक दी, अब गेंद हमारे पाले में है. तो अब हम इस गेंद को खेलेंगे कैसे. इसे कहानी याद आ रही थी. एक बार एक ग्रुप होता है, वो कोई टापू पर जाते हैं, तो वहां पर बहुत आग लग जाती है, तो सब आगे आगे बढ़ के जा रहे होते हैं क्योंकि आग से बचना होता है. परंतु उनमें से एक व्यक्ति होता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं, मुझे तो भगवान ही आएगा बचाने के लिए, मैं तो यहीं खड़े रहूंगा. और बाकी सब धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं. इतने में आग बढ़ती जाती है, लेकिन वो फॉर्म रहता है कि भगवान को ही आना पड़ेगा मुझे बचाने. तो थोड़ी देर में एक स्टीमर आता है वहां पर, और वो कहता है व्यक्ति इसमें से, क्या हो, बैठ जाओ, आग बढ़ रही है. नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, भगवान को ही आना पड़ेगा मुझे बचाने. तो स्टीमर चला जाता है. इतने में थोड़ी देर में वहां हेलीकॉप्टर आता है, तो हेलीकॉप्टर वाला व्यक्ति उसको बुलाता है कि आ जाओ तो बच जाओगे. वो कहता है मैं नहीं आऊंगा हेलीकॉप्टर में, मुझे तो भगवान ही बचाने आएगा. फिर ऑब्वियसली आग बढ़ती है और वो मर जाता है. फिर वो पहुंचता है भगवान के पास और भगवान से लड़ता है कि मैं इतना विश्वास कर रहा था, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए. हाँ, मैंने तो सोचा था कि तुम ही बचाओगे मुझे. तो भगवान उससे कहते कि मैंने तो गेंद फेंकी थी, मैंने तो स्टीमर भेजा, मैंने ही हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन बारी तुम्हारी थी, तुम नहीं चढ़े स्टीमर में, तुम नहीं चढ़े हेलीकॉप्टर में, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु हो गई. तो यहां पर भी ऐसे ही है कि ज्ञान तो बाबा ने दे दिया, अब हमें क्या करना है. जैसे लौकिक में बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, है ना. जब कोई बच्चा 12th का एग्जाम देता है तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना. कभी किसी के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, मेडिकल में भी जा सकता है, और भी दूसरी फील्ड्स. मेडिकल में भी उसको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो ऑलरेडी गेंद तो फेंक दी, अब हमारी बारी क्या करना है. जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनके लिए दवा लिखते हैं, हम उनको समझाते हैं कि डाइट ऐसी फॉलो करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है. तो हमने तो गेंद फेंक दी. अब ये तो पेशेंट पर डिपेंड करता है ना कि वो फॉलो करेगा कि नहीं, तो ये उसकी बारी. इसी तरह से अगर किसी को बड़ी लॉटरी लग गई, बहुत पैसे आ गए, कोई ब्राह्मण जीवन में किसी को बड़ी लॉटरी लग गई, तो अब वो कैसे उसको सफल करता है ना. गेंद तो फेंक दी, अब उसके पाले में है, मतलब बाजी हमारी, अब हम कैसे इसको सफल करेंगे इस चीज को. तो ऐसी कोई बातें हम ज्ञान की देखेंगे. तो सबसे पहली पॉइंट है मुरली, है ना. सबसे पहली पॉइंट है मुरली. मुरली हम सब सुनते हैं, रोज क्लास में जाते, मुरली सुनते। मुरली खत्म होने के बाद क्या, बाबा ने तो ज्ञान सुना दिया, अब हमारी बारी। कई लोग मुरली सिर्फ सुनते हैं, कई लोग रोज मुरली पढ़ते हैं, कई लोग 3 बार 5 बार 10 बार ऐसे भी मुरली पढ़ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मुरली का चिंतन करो। कल की मुरली में क्या पॉइंट था? अपनी घोट तो नशा चढ़े, ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू। बाबा ने कहा है कि ज्ञान की पॉइंट्स, ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में टपकते रहने चाहिए। तो मुरली को पढ़ने के भी बहुत सारे मेथड्स है। एक तो है जैसे मुरली को ऊपर से लेके नीचे तक हमने पढ़ लिया, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। अगर मुरली को गहराई से देखें तो यहाँ पर मधुबन में 108 मेथड्स निकाले थे मुरली पढ़ने के। जैसे कि किसी ने कहा कॉन्ट्रास्ट मेथड, मुरली में बाबा कई चीजों के कॉन्ट्रास्ट करता है। जैसे कि आज मुरली में बाबा ने सत्ययुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट किया, संगम युग का और सत्ययुग का कॉन्ट्रास्ट किया। तो कॉन्ट्रास्ट मेथड से मुरली को देखना, जब हम मुरली पढ़ रहे तो उस मेथड को ध्यान में रखते हुए मुरली पढ़ना। कभी किसी ने कहा सेल्फ चेकिंग मेथड, आज मुरली में ऐसी कौन सी पॉइंट्स है जिस पर मैं अपनी चेकिंग करूंगी, कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो मुझे देखनी है कि मेरे में है ये। तीसरी ड्राइंग मेथड, कहीं यहाँ पर आर्टिस्ट है, मुरली को ड्राइंग के रूप में निकालते, जो भी मुरली में पॉइंट आया उसको ड्राइंग के रूप में निकालते और मुरली उस तरह से याद रखते। तो एक है ड्राइंग मेथड। कोई ऐसे है जो मुरली पर पोएम बनाते, बाबा की जो 4 पेज की मुरली है, जो बाबा का लव लेटर है हमारे लिए, कोई उस पर पोएम बनाते, तो मुरली का उस तरह से अध्ययन करना। आज मुरली में बाबा ने कौन सी भविष्यवाणी की, उस नजरिए से मुरली को देखना। आज बाबा ने मुरली में सेवा के लिए कौन से पॉइंट्स बोले, उस तरह से मुरली को देखना। कईयों को आपने देखा होगा हाईलाइट करते मुरली को, है ना, तो हाईलाइट मेथड, हाईलाइट करके फिर उस हाईलाइट वाले पॉइंट्स को पढ़ना। कोई होते कैची वर्जन मेथड, मतलब ऐसी कौन सी पॉइंट है आज की मुरली में जो सचमुच ऐसी पकड़ने जैसी है, जो इतने दिनों से नहीं आई लेकिन आज की मुरली में आई है वो पॉइंट, तो कैची वर्जन मेथड। तो ऐसे बहुत सारे मुरली के मेथड्स हैं जिससे हम मुरली का अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे कहा ना कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, बाबा मुरली में कई पॉइंट्स बोलता है लेकिन उसमें हमारा क्या चिंतन चलेगा। हम इतने सारे लोग यहाँ पे, हम सबकी बुद्धि अलग अलग, हम सबके एक्सपीरियंस, हम सबके अनुभव अलग अलग, उस तरह से हम मुरली को देखें। जैसे आने वाले संडे की मुरली में बाबा ने भाग्य की बात की है, भाग्य और कर्म। तो हम जब 8-10 लोग ही मुरली पढ़ रहे थे कल रात में, तो कह रहे थे कि भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, भाग्य फिक्स है या कर्म करेंगे तो भाग्य बनेगा, है ना। हम हम जब ये डिस्कशन करने लगे, इस पे चिंतन करने लगे, तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो एग और चिकन जैसा है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो हमने कहा देखो मोदी जी चाय बेचते थे, आज प्राइम मिनिस्टर है। तो किसी ने कहा कि अरे वो तो तुमको क्या लगता है वो मेहनत से प्राइम मिनिस्टर बना, क्या दूसरे लोग मेहनत नहीं करते, है ना। सोचने वाली बात है ना, चिंतन करने वाली बात है कि मेहनत या भाग्य फिक्स है। तो क्या सत्ययुग में हमारे भाग्य फिक्स है, तो क्या हमको संगम युग पर पुरुषार्थ नहीं करना। बहुत सारा विचार सागर मंथन चलाकर कि सृष्टि सत्ययुग से क्यों नहीं चालू हुई, सृष्टि जब चालू होती है तब तो नहीं चालू होनी चाहिए ना, संगम युग से चालू हुई। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे कल मन में। तो उस तरह से मुरली का चिंतन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जैसे कोई भी आके क्लास तो करा देते लेकिन वो उसके नशे वाली पॉइंट्स है, वो उसका एक्सपीरियंस से बोलता है। तो उस तरह से हम भी मुरली को उसी तरह से ले, अपने चिंतन चलाए, तब नशा चढ़े। तो ये गेंद हमारे हाथ में कि हम मुरली को कैसे देखेंगे, कैसे धारण करेंगे। तो पहला पॉइंट मुरली। दूसरा पॉइंट योग। बाबा ने हमको विधि बता दी योग कैसे करना है। बाबा ने कहा ना कि विकर्म विनाश करने है तो योग ही एक विधि है ना। और कल ही बोला था ना बाबा ने घोष्टों को भगाना है ना, वो कैसे होगा, योग से, योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। लेकिन इन सब चीजों का बैलेंस, अब योग हम सबके पास समय है, लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि योग के लिए समय नहीं है। जब मधुबन में आते तो कहते कि योग लगता है, जब मधुबन में आते हैं तो कहते कि बराबर अमृत वेला होता है, लेकिन बाहर जाने के बाद नहीं होता। तो ऐसे क्या करें कि बाहर जाने के बाद भी दिनचर्या वैसे ही सेट हो जैसे मधुबन की हो? तो उसके लिए तो पुरुषार्थ है ना। तो सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन सी पॉइंट्स ध्यान में रखे, यहाँ से क्या सीख के जाए हम, क्योंकि गेंद तो अभी हमारे पाले में है ना, तो हमको गेंद खेलनी है। बाबा नहीं देखेगा कि क्या है, क्या तुम्हारी मुश्किल थी, बाबा तो कहेगा सबको टाइम था, बोलेगा ना बाबा, टाइम होते हुए भी हम नहीं करते। तो कैसे कर्म और योग को कंबाइन कर ले, कैसे कर ले, बहुत सारी पॉइंट्स है ना। जैसे अभी यहाँ पर कोई लिटरेचर बेचता है, ठीक है, लिटरेचर डिपार्टमेंट में उसकी सेवा है, तो अभी योग ज्ञान सबको कंबाइन करते हुए अगर हम किसी को बुक दे रहे सपोज, तो क्या करना चाहिए उस, अभी अगर हमको थोड़ा स्मार्ट बनना है ब्राह्मण जीवन में, थोड़े आगे मार्क्स लेने हैं, तो उस बुक में ऐसी कौन सी अच्छी अच्छी पॉइंट है, उस पॉइंट को याद करते हुए, या फिर तो दूसरे लोग भी आते हैं ना, वो भी बुक खरीदते हैं यहाँ से, तो उस पॉइंट को बताए कि पता है इस बुक में ये पॉइंट है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इधर बाबा ने ऐसा कहा है। अगर कोई अव्यक्त मुरली कोई ले रहा है, खोल दे उसी के सामने, उसको भी वो पॉइंट याद रह जाएगी, हमको भी वो पॉइंट याद रह जाएगी। तो उस पॉइंट को याद करके उसको बताते हुए फिर उसको दे, तो कितना अच्छा होगा ना। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे कर्म होते हैं ना पूरे दिन भर में। कोई वॉकिंग पे जाता है, तो वॉकिंग पर भी जब हम जा रहे हैं तो बाबा की याद में वो वाइब्रेशन फैलाते हुए। कई साल पहले सूरज भाई ने उसे कहा था नक्की पर जाओ तो सिर्फ सिर्फ वाइब्रेशंस फैलाओ पूरे माउंट आबू में। आज माउंट आबू में भी ऐसी आत्माएं हैं जिनको ज्ञान नहीं है कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है ना। बाहर से विदेशी यहाँ पर आते हैं, बाहर से आप सब भी आते हैं, लेकिन माउंट आबू के लोग अभी तक नहीं पता कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। तो ये तो हमारी कमी हुई ना। तो गेंद हमारे पाले में कि कैसे हम उनको ज्ञान दे, कैसे हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशन उन तक पहुंचे, है ना। इसी तरह से जैसे स्नान करते हैं, तो हमेशा कहते हैं ना स्नान करते हुए बाबा को याद करो। तो आज हम सोच रहे थे कि बाबा देखो अभी स्नान करते वक्त क्या क्या चीजें होती, पानी होता है और साबुन होता है, तो सोप को बाबा कहता है लक्ष्य सोप। तो उस ज्ञान की पॉइंट्स को दोहराए कि आज मैं स्नान करके बाहर निकल रही हूँ, तो आज मेरा दिन का लक्ष्य क्या है, आज मुझे क्या करना है, ये संकल्प लेते हुए स्नान। तो ज्ञान मानसरोवर है बाबा ने कहा, ये पानी क्या है ज्ञान, तो बाब ज्ञान सूर्य है और उस ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही है, ऐसे करते हुए कर सकते हैं। जैसे भोजन, बाबा ने कहा भोजन पर भी मुझे याद करो, अब उसको थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जब भोजन परोसने की सेवा में यहाँ पे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक्स करना, ये भोजन जो आ रहा है ये हम सब के एक एक रुपए जो जाते बॉक्स में उसकी वजह से ये भोजन बनता है। तो इतनी श्रेष्ठ स्मृति में वहां खड़े रहना भोजन परोसते टाइम कि ये जो भोजन है ये सबकी मेहनत से बना हुआ है, उन सबको थैंक्स जिन्होंने ये भोजन बनाया, जिन्होंने यहाँ पर सेवा में पैसे भेजे, उन सबको शुक्रिया करते हुए भोजन परोसना। एक तो ऐसा होता है कि बहुत मिठास हो, बहुत मधुरता हो, और वो परोसने के टाइम पे हम आत्मिक दृष्टि रखे, भोजन में वो वाइब्रेशंस डाले। लेकिन अभी एक और स्टेप आगे कि शुक्रिया धन्यवाद करते हुए लोगों को भोजन परोस सकते, तो ऐसे बहुत सारे योग और कर्म को हम जोड़ सकते। कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में एक पॉइंट था कि संबंध संपर्क में आते हुए प्रश्नों से पार रहो और प्रसन्नचित रहो, संबंध संपर्क में आते हुए प्रश्नों से पार प्रसन्नचित आत्मा हो। तो अभी देखो बाबा ने ये ज्ञान दे दिया ना हमको, अभी संबंध संपर्क में आते हुए बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, बहुत सारी टकराव होंगी, लेकिन बाबा ने क्या कहा, प्रसन्नचित, प्रश्न नहीं उठने चाहिए। तो गेंद अभी हमारे हाथ में, तो जैसे कि सामने वाला अगर कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा या कोई टकराव हो रही है, तो भी बाबा ने कहा क्यों क्या के प्रश्न नहीं, इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। बाबा ने कहा इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, जैसे वो लौकिक दुनिया में बर्थ कंट्रोल करने के लिए कुछ कुछ करते, पेल्स और वो सब देते, ऑपरेशन करते, यहाँ पे बाबा ने कहा व्यर्थ रचना, ये जो हमारे संकल्प है व्यर्थ, उसकी व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, है ना। तो अब कैसे करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो किसी के साथ, कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे उसको, क्या पॉइंट्स आपकी बुद्धि में आ रहे हैं कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मन में क्या प्रश्न उठता है, इसने क्यों ऐसे बोला, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इसने ऐसा क्यों किया, अब इसको मुझे फुल स्टॉप लगाना है तो मुझे क्या करना है, क्या करना है, हाँ साइलेंस हो जाओ। अच्छा, उसका रोल ही ऐसा है, वो परवश है, हिसाब किताब है, निर्दोष दृष्टि से देखना उसको, समान में रहने का अभ्यास करना, ड्रामा, हाँ हिसाब किताब चुक तो हो रहा है मेरा, बाबा ने कहा बेहद की दृष्टि रखो, और किसी ने कुछ बोल दिया आपको व्यर्थ चल रहा है आपका, तो व्यर्थ को आप फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे। बाबा ने कहा ना प्रश्नों से पार प्रसन्न चित रहना है, तो प्रसन्न चित रहना है, ठीक है। देखो पॉइंट कैसा है, खुश रहना है, ये सब चीजें हम करते होंगे ना, कितनी बार फेल होते हैं लेकिन हम, तो क्या करने का, आई एम रिस्पॉन्सिबल, अच्छा मैं ही जिम्मेदार हूँ, हाँ ये भी पॉइंट अच्छी है। दूसरा जो कर रहा है उसके रजिस्टर में लिखा जा रहा है, वो उसके कर्म है, अब जो मैं, जैसे ये बराबर पॉइंट है, अब गेंद, जैसे अब गेंद मेरे पाले में, अब जो मैं करूंगी वो मेरे पास, मेरी बारी, मेरे कर्म, है ना। ये अच्छी पॉइंट है कि अब जैसे कर्म, वो तो बुरे कर्म कर रहा है मुझे बोलकर, वो कुछ कुछ गलत बोल रहा है, वो तो खराब है, उसने तो गलती कर दी, लेकिन अगर मैंने भी गलती करी तो हम दोनों एक ही कटरे में, है ना। और शुभ भावना, शुभ कामना रखना, कल्याण की भावना रखना, बहुत अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये अच्छे कर्म, ये हमने गेंद बहुत अच्छी खेली अगर हमने ऐसे कुछ किया तो। तो बाबा ने कहा संबंध संपर्क में रहते प्रसन्नचित, तो ये पॉइंट है कि ये रोज की लाइफ में हमारे आएगा, चाहे हम अपने कर्म में हो, चाहे हम अपने लौकिक घर में हो, चाहे हम मधुबन में हो, हम किसी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, है ना, जरा सा कभी हम लेट आ गए या कुछ हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे, है ना। तो जैसे इन्होंने यहां से कहा ना शांत रहना, अंतर्मुखी सदा सुखी, कभी कभार शांत रहने में ही भलाई है। तो ऐसी कोई कोई पॉइंट्स याद रहनी चाहिए हमको कि कैसे हम प्रसन्नचित रहे। कभी हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाली थी, अपने माइंड को डाइवर्ट करना उस समय अगर हम सोचेंगे ड्रामा, उस समय हम सोचेंगे हिसाब किताब, मन एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता, उस समय उस स्थान से चले जाना, डाइवर्ट कर, या वॉकिंग चले जाओ, या सेवा में लग जाओ, विदड्रॉ कर लेना, या तो कोई बाहर जाओ, किसी की सेवा करो, किसी को ज्ञान सुनाओ, या ओम शांति भवन में जाओ और गाइड सेवा करो, तो खुशी मिलेगी। तो ऐसी कोई चीज करनी है, किसी को पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाओ कि ऐसा था यहाँ पे, ऐसा था, या बाबा बैठते थे, या मम्मा बैठते थे, या दादी, या मुरली चलती, ये सब बताते बताते, हिस्ट्री भी बताते बताते बहुत खुशी होती है। तो ऐसी कोई चीज करना, है ना। फिर अगली पॉइंट है भोजन टोली। अब बाबा ने तो हमको भोजन का भी ज्ञान दे दिया, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी टोली दी हमको। अब लोग कंप्लेन करते, देखो गेंद बाबा ने फेंकी, अब बारी हमारे हाथ में, लोग कहते बाप रे इतनी सारी टोली, टोली खा खा के मोटे हो रहे हम, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कहीं बाहर से आते बोलते कितना ऑयल है ये भोजन में, कुछ कुछ बोलते। अभी गेंद तो आपके हाथ में है ना, टोली तो ले लो, पूरी टोली खाना ये आपके हाथ में, किसने कहा पूरी टोली खाओ। कई लोगों को हमने देखा है टोली लेते हैं, सिक्योरिटी में देते हैं, लेबर्स को देते हैं, स्टाफ को देते हैं, हॉस्पिटल में जाके कोई जमा करना है, घर लेके जाएंगे, सेंटर पर बांटेंगे, अपने लौकिक फैमिली को बांटेंगे। कहीं ऐसे लोग होते हैं जो टोली ले लेते हैं, घर जाके टेबल पर रखते हैं, इतना सा एक ऐसे खाते हैं, तो गेंद हमारे पाल में, लेकिन हम कंप्लेन करते रहते उस पर भी। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बारी हमारी, कर्म हमारे, कैसे हमको इस गेंद को खेलना है, है ना। जैसे भोजन आता है सामने, कितनी बार वेस्ट कर देते, बोलते कि इतना सारा डालते, अरे तुम्हारे पे डिपेंड करता है ना कि कैसे लेना है। जैसे अभी हमारी लौकी फैमिली आई थी, अब हमको पता था ये लोग नहीं खाते ज्यादा, वो चार लोग थे लेकिन हम उनके लिए एक ही प्लेट लेके जाते थे। वो जो एक वाटी दाल थी ना, उस एक वाटी दाल में से चार लोग खाते थे, वो इतनी सी जो सब्जी थी ना, वो चार लोग खाते थे। हम उनको कहते थे अलग अलग प्लेट ले लो आप लोग, नहीं 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 वेस्ट नहीं करना है। देखो बाहर के लोग भी कैसे सोचते, कितना कदर है उनको इस भोजन का, है ना। तो हमको भी उस भोजन का उतना कदर होना चाहिए। तो वो कितना डिपेंड, वो अपना कितना कर्मों पे सोच रहे हैं कि भोजन को वेस्ट नहीं करना। एक ही प्लेट में चार लोगों का डिवीजन होता था, ठीक है, हमारे बोलने के बाद भी उन्होंने अलग अलग प्लेट नहीं ली, छोटी छोटी अलग प्लेट लेके डिवाइड करके खाते थे वो। लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए भोजन। तो कैसे हमारी दृष्टि है, तो भोजन तोली। इसके बाद जैसे कि बाबा ने दिव्य गुणों की माला हमें दे दी, है ना, बहुत सारे गुण दिए। अब इतने सारे गुण है, गिनो, बहुत सारे गुण है, बोलो। मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, साक्षी दृष्टा, पवित्रता, सहनशीलता, सरलता, अंतर्मुखता, निर्माणता, आज्ञाकारी, दिव्यता, ऑनेस्टी, धैर्यता, फरमान बरदार, नम्रता, कितने सारे गुण है। सब गुणों पे हमने काम कर लिया, बाबा ने तो दे दिया माला, रतन भर के दे दिए प्लेट बाबा ने हमारे पास। बस एक एक गुण पे काम करना होता है, क्योंकि गेंद हमारे पास है, एक एक गुण पे काम करना। हम एक वर्कशॉप करते हैं जिसको कहते हैं विहासा, वैल्यूज इन हेल्थ केयर। दादी जानकी जब लंदन में एडमिट थे बहुत साल पहले, 2001-2003 में, उस टाइम दादी ने देखा लंदन में जब डॉक्टर्स उनके टेबल के पास आते थे तो दादी देखते थे ये डॉक्टर्स पेपर्स को ज्यादा देखते और मुझे कम देखते। फिर दादी को ऐसा लगा ये बहुत स्ट्रेस में सारे डॉक्टर्स के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, दादी को ऐसे लगा। तो फिर दादी ने वहां पर कहा कि कुछ ऐसे दिव्य गुणों पर काम करना है, वैल्यूज पर काम करना है इन डॉक्टर्स के लिए। तो 9 महीना बैठ कर वहां के साइकोट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बीके सिस्टर्स, लंदन जानकी फाउंडेशन ने इस पे काम किया और एक बुक आई वैल्यूज इन हेल्थ केयर। उस पे 8 मॉड्यूल्स बने, 8 चैप्टर्स। उसमें से फर्स्ट मॉड्यूल वैल्यूज पर ही है, सेकेंड पीस शांति, ऐसे अलग अलग है, कोऑपरेशन, सहयोग, कंपैशन, दया, ऐसे कुछ मेन उठाए गए जो डॉक्टर से रिलेटेड है। तो जैसे शांति, अब जब हम ये वर्कशॉप लोगों के साथ करते हैं, डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ केयर नर्सिस के साथ, तो ये 6 से 7 घंटा करते हैं उनके साथ। जैसे उनको सबसे पहले एक्टिविटी कराते कि शांति क्या है, व्हाट इज पीस, तो वो उस पर चिंतन करते कि शांति ये है, उनके लिए शांति क्या है। तो कोई कहता है हमारा पेरेंट जब मुस्कुराता है तो वो शांति है, कोई कहता है कि सागर के किनारे बैठते तो वो शांति है। फिर उनको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाते मेडिटेशन की, पहले उनको शरीर से करवाते कि हार्ट टाइट करो, लूज करो, ऐसे कमेंट्री देते तो वो बहुत रिलैक्स होते बॉडी से। फिर थर्ड उनको हम अंदर लेके जाते इनर पीस पर, कि अंदर की शांति पर कमेंट्री होती है उनकी। फिर हम उनको कुछ एक्टिविटी देते, पीस इन एक्शन, कर्म करते हुए क्या हम शांत रह सकते, तो वो सोचते अच्छा कर्मों में भी शांत रह सकते, उनको लगता है कि बस बैठ के ही शांत रह सकते। फिर उनको डिजाइनिंग पीस देते, कुछ उनको चार्ट बनाने के लिए कहते, फिर वो सोचते कि हम शांत रहेंगे तो कैसा रहेगा। फिर हम उनको पूछते यहाँ से जाने के बाद अब आप कौन सी एक ऐसी चीज करेंगे जिससे आप बहुत शांत रह सकेंगे, अपने घर में या अपने कर्म में। तो जब 6 घंटा उनके साथ शांति पर काम करते हैं तब जाकर उनको थोड़ा सा समझ में आता है कि शांति क्या है। तो यहाँ तो बाबा ने इतने सारे गुण दिए हमको, तो उन सारे गुणों पर हमने कितना काम किया है ना। दिव्य गुणों की माला जब बाबा कहता है तो एक एक गुण को लेकर उस पर इतना चिंतन करना, ऐसे ही बहुत सारे गुण है वो बुक के अंदर, तो उस एक एक गुण पर काम करते। नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। है ना, लास्ट दो महीने से बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे, एक एक करके सब आ रहे, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली, नवरात्रि, बीच में आई बकरीद, मोहर्रम। हाँ, तो हमने सोचा कि फेस्टिवल्स ऐसे ही मनाना है। बाबा ने तो कहा संगम युग मौजों का युग है ना, और अच्छा लगता है हमको जब बाबा ऐसे कहते हैं संगम युग मौजों का युग है। लेकिन बाबा ऐसे नहीं कहा हमको कि इसको ऐसे ही मना लो, फिर तो हम लौकिक वालों की तरह हो गए, है ना, वही फटाके फोड़ेंगे, वही फूलझड़ी जड़ाएंगे, वही अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगे, अच्छी अच्छी स्वीट्स खाएंगे। लेकिन हमको उसका आध्यात्मिक रहस्य जानते हुए मनाना है। जैसे बकरीद आई थी तो हमने उस पर चिंतन किया कि बाबा हमेशा कहता है कि मैपन से तुमको मुक्त होना है। ये जो मैं बकरी करती है, तो उन्होंने क्या किया, बकरी की बलि चढ़ाने लग गए। तो हमने अभी पूरी हिस्ट्री देखी इस चीज की, बकरीद में बकरीद क्यों बनाते हैं। जो इब्राहिम था उसको एक सपना आया, हाँ, तो अल्लाह ने उससे कहा कि तू मुझे बहुत प्यार करता है ना, तो तुझे तेरे बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इब्राहिम रेडी हो जाता है कि ठीक है। तो फिर वो अपने बच्चे से कहता है कि अल्लाह का फरमान है कि मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी है कल। तो बच्चा कहता है ऑब्वियसली वो भी वैसा ही है अल्लाह की इबादत करने वाला। तो वो कहता है जरूर पिताजी, आप ये भी ध्यान में रखना कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएंगे तब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधना, और पट्टी बांधकर फिर चलाना। तो इब्राहिम आंखों पर पट्टी बांधते और फिर उस बेटे को, बस छुरी चलाने वाले ही होते हैं कि सामने वो बकरा आ जाता है, मेंढा आ जाता है और उस पर छुरी चल जाती है। तो तब से मुस्लिम्स कुर्बानी करने लगे बकरे की, ठीक है। अब हम ज्ञान की दृष्टि से इसको देखें तो बकरी ईद में छुरी चलाते। अब छुरी किस चीज पर चलानी है, मैपन, विकारों पर, अहंकार। छुरी उस चीज पर चलानी है जो हमें बाबा से दूर करती है, जैसे हमारी इच्छाएं वो बाबा से हमको दूर लेके जाती है, उस चीज पर छुरी चलानी है। ये जो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिस पर बहुत ज्यादा हम चले जाते हैं, ये जो हमको बाबा से दूर करती है, इस चीज पर छुरी चलानी है। हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारा जो व्यर्थ है, जब हम व्यर्थ में होते हैं तो कहाँ बाबा को याद करते हैं, उस चीज पर छुरी चलानी है। तो यहाँ तक कि इस्लाम में भी जो बहुत अध्ययन करते हैं ना, वो इसको जानते हैं, लेकिन सब नहीं जानते, सब उसी को जानते हैं कि बस बकरा काटना है और ठीक है। तो उस चीज पर छुरी चलानी। फिर जैसे वो नए कपड़े पहनते हैं, तो हमने सोचा नए कपड़े पहनते मतलब जब ये होगा तो नवीनता लानी है, बाबा ने कहा ना, नए संस्कार भरने हैं, पुराने संस्कारों को मिटाना है। फिर उनमें भी सेवई, शिरकुमा, मीठा मीठा सब बनता है, तो हमारे जीवन में भी मधुरता आनी चाहिए हमारे जीवन में भी। तो इस तरह से उसका ये रहस्य है। फिर थोड़े दिन के बाद मोहर्रम आया, हमने सोचा बाबा मोहर्रम के बारे में तो कुछ नहीं बोला अभी तक, अब इसमें क्या है, कुछ तो रहस्य होगा। मोहर्रम जानते हैं इस्लाम में, मोहर्रम, हाँ, ताजिया सब बनाते। इसमें हुसैन जो है, जो मोहम्मद प्रॉफिट के पोते, ठीक है, ये करबला का मैदान था, उधर ये बहुत फाइट हुई यजीद और इनके बीच में, और उस टाइम उनको पानी नहीं मिला, बहुत बहुत विरोध हुआ और बहुत बच्चे, बहुत फीमेल सब ने शरीर छोड़ा, तो उसको करबला का मैदान कहते हैं। तो इस टाइम पे जो मुस्लिम धर्म में शियाज हैं वो मातम करते और वो अपने आप को जोर जोर से मारते और कहते या हुसैन हम न थे, मारते और कहते या हुसैन हम न थे, और 10 दिन तक ये चलता है, कहीं कहीं 1 महीने तक भी चलता है। और वही 10 दिन हर जगह शब्बिल बनाई जाती है पानी की, शब्बिल मतलब छोटी छोटी ऐसी प्लेस डेकोरेट करते हैं, पानी के मटके रखते हैं और ध्यान देते हैं कि जो भी मुसाफिर आए आज प्यासा ना जाए, सबको पानी मिले, क्योंकि उस टाइम पानी नहीं मिला था तो वो सोचते सबको अभी पानी पिलाना चाहिए। और 10वें दिन जो आशूरा है उस दिन शरबत बनाते और सबको बांटते, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये लोग तो अलग है, वो लोग अलग थे, लेकिन ये लोग मातम करके या हुसैन हम ना थे। तो ये जो मातम है ये क्या है? पश्चाताप है, रिपेंटेंस है, रिग्रेट है, फॉरगिवनेस मांग रहे कि हमने कोई गलती कर दी, हमको माफ कर दो। एक गिल्ट है उन लोगों में कि हमने ऐसा किया। तो हम सोच रहे थे ब्राह्मण जीवन में हमने भी अपने पुराने जन्म, इस जन्म में अपने लौकिक जन्म या ब्राह्मण जन्म में आने के बाद भी ऐसे विकर्म किए हैं। और बाबा कहता है ना कि योग में उन आत्माओं से माफी मांगो जब हमने कोई बुरा कर्म किया है। ये नहीं है कि हमने किसी को पानी नहीं दिया था, लेकिन हमको माफी मांगनी उन सब आत्माओं को इमर्ज करके। आज हम सब यहाँ पर एक साथ है, कोई ना कोई कर्म है तब साथ में, तो उन सब आत्माओं को अमृत वेला इमर्ज करके उन सब से माफी मांगना कि जो हमने किया उसके लिए हमको माफ कर दो, और उनको भी क्षमा करना कि उन्होंने भी हमें कुछ किया होगा तो उनको भी क्षमा करना। इसलिए मुहर्रम। फिर अब लास्ट हफ्ता हम लोगों ने मनाई दिवाली, है ना? तो दिवाली मनाई, तो दिवाली का रहस्य भी तो भी जाने। कुछ दिन पहले ही वरदान आया था ना बाबा का दिवाली के बारे में, क्या आया था? दिव्य गुणों का आह्वान करना है। 1970 की मुरली से ये वरदान था, पूरी दीपावली पे ये मुरली है। और बाबा ने उस मुरली में कहा, सबसे पहले कहा सफाई और कमाई, सफाई स्वच्छता, है ना? तो जीवन में स्वच्छता आनी चाहिए, जो भी हमारी कमजोरियां है, नेगेटिविटी है, व्यर्थ है, उन सबको हम साफ कर दे। तो सफाई, जैसे घर की सफाई कर रहे, इस घर की भी, इस घर की कोने कोने में क्या क्या बिठा के रखा है उन सब की सफाई। फिर उस मुरली में बाबा ने कहा कमाई, कमाई करते तो नया चोपड़ा खोलते हैं, है ना, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो पुराने संस्कारों को खत्म करना, कमजोरियों को, निर्बलता को, ये सब कहा ना उस दिन वरदान में बाबा ने, और नए संस्कारों को धारण करना। फिर उसमें नए वस्त्र पहनते, तो नए वस्त्र पहनते तो नया चोला, नए संस्कारों का, नवीनता का, नए गुणों का, ये सब चीजों को धारण करना। ताजपोशी होती बाबा ने कहा उस मुरली में, तो यहाँ पर भी आपको सत्यु के नजारे नजर आने चाहिए। तो जब उस दिन हम दिवाली मना रहे थे यहाँ पर, तो क्या हम सबको ये सब याद था? ये सारी सेल्फ चेकिंग की चीजें है, क्या हम सबको ये याद था कि जब सफाई हो रही थी तो यहाँ की भी सफाई होनी चाहिए, यहाँ की भी सफाई होनी चाहिए, है ना? जब हम डेकोरेट कर रहे थे इस सब चीजों को, तो क्या हम यहाँ पर दिव्य गुणों से अपने आप को सजा रहे थे? ये याद करना, है ना? जब वहां पे फंक्शन होता है, जब फटाके फटते, तो ये सारी पॉइंट्स को याद करना। देखो ज्ञान बाबा ने दे दिया, इसलिए गेंद अब हमारे पाले में कि हम इन फेस्टिवल्स को भी कैसे मनाएंगे। फिर कल की मुरली में था बीमारी के ऊपर एक पॉइंट, तो बाबा ने क्या कहा, कर्म भोग को कर्म योग द्वारा चुकतु करना। तो आपको शरीर का दर्द महसूस नहीं होगा, बाबा ने कहा, बाबा की याद रहेगी तो दर्द भी कम हो जाएगा। मम्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, कहा कि मम्मा बाबा तो सबसे ऊंच है ना, तो इनको भी यही सबसे नीचे आए, तो सबसे ज्यादा तो कर्म भोग इनको होना चाहिए, लेकिन याद के द्वारा वो सब खत्म हो गया, है ना? तो बीमारी में क्या याद करना, है ना? बाबा ने इस चीज का ज्ञान दे दिया, तो गेंद हमारे पल्ले में पड़ गई। अब जब गेंद हमारे पाले में है, तो अब उसको कैसे फेंकना है, हमारा मूव क्या होना चाहिए, तो उस पॉइंट्स को याद करना। जैसे साकार मुरली में एक टाइम पॉइंट था, अच्छा है अभी बीमारियां होती है, धर्मराजपुरी से पास नहीं होना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में डंडे नहीं खाने पड़ेंगे, बाबा ने कहा कि अच्छा अभी बीमारी हो रही है। तो बाबा इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स कहता है, तो वो सारी पॉइंट्स को याद करना। देखो कितना अच्छा, अगर बीमारी है तो बाबा का निमंत्रण है अव्यक्त वचन, बीमारी है तो बुद्धि को रेस्ट मिलती है, अकाउंट सेटल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दर्द है कहीं पे, फिर वो दर्द चला जाता है तो ऐसा लगता है हल्के हो गए, कोई ना कोई था वो चुकतू हो गया, कोई ना कोई अकाउंट था वो चुकतू हो गया। और भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स याद कर सकते हैं। नहीं क्रिएट नहीं, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि हल्का हो जाता है, हल्का हो, जैसे बीमारी आई, बीमारी का आह्वान नहीं करते हम, लेकिन जब बीमारी आई तो हमारे संकल्प क्या होने चाहिए। देखो बाबा ने ज्ञान दे दिया ना कि बीमारी के टाइम ये सोचो, लेकिन हम सब बच्चे इतने अच्छे संकल्प नहीं करते वो टाइम पे। कई बार हमने देखा है कि बहुत व्यर्थ संकल्प सोचते हैं हम, हॉस्पिटल में देखते सोचते कि अगर हमारे साथ कोई होता तो अच्छा रहता, आज हमारे पास भी कोई खड़ा रहता तो अच्छा रहता, ये सारे संकल्प आने लगते। लेकिन बाबा ने ये ज्ञान दिया है ये सारे संकल्प आने चाहिए, लेकिन वो छोड़ के हमारे पास ये व्यर्थ आता है। तो वही हम कह रहे कि गेंद हमारे पास है तो हम कैसे खेलेंगे उसको। तो ये सारे विचार जगदीश भाई जी की एक क्लास थी उसमें हमने सुना था, बहुत अच्छी, बहुत रमणीकता से देखो अपने आप को कैसे भरना बीमारी के टाइम। जैसे किसी का सिर दर्द हो रहा है तो वो सोचे कि रतन जड़ित ताज बाबा ने मेरे सिर पे रख दिया है, तो उस समान में रहे, उस स्मृति में रहे। फिर किसी का गला दुख रहा है तो इससे, तो ये ज्ञान कंठ है, इससे ज्ञान निकलता है। किसी के बहुत शोल्डर दुख रहे, कंधे दुख रहे, तो बाबा ने विश्व की जिम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पर, कंधों पर रख दी है। किसी को हार्ट की बीमारी है तो वो सोचे दिलाराम बाप मेरे दिल में बैठा है। किसी को आंखों की बीमारी है, कम दिखता है, तो एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। किसी का पेट में दर्द हो रहा है तो मैं गणेश हूँ, जैसे कि मैं सब कुछ समा लेता हूँ। किसी के पैरों में दर्द है तो वो क्या कहे कि मैं तो श्रीमत पर चलने वाला हूँ, मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो देखो कितनी सकारात्मकता इसमें है ना। सोच सकते हैं ना, सिर दर्द हो रहा है, मेरा ही क्यों दुख रहा है, किसी और का क्यों नहीं है ना, क्या करूं मैं, दूसरे तो देखो आराम से योग में बैठे, मेरा ही सिर दुख रहा है, मुझे ही हार्ट की बीमारी हुई और किसी को नहीं हुई, मेरा ही गला दुख रहा है, मेरी आंख ऐसी हो गई, मेरी आंख को ऑपरेशन। सब सोच सकते ही हम, गेंद यहाँ पर हमारे पास है, जैसे गेंद फेंकनी अब हम पे डिपेंड करता है। तो इतनी सकारात्मकता रखना उस टाइम पर। तो ऐसे कई पॉइंट्स आ सकते। तो सेवा में, अब लास्ट पॉइंट है सेवा। अब सेवा में बहुत सारी चीजें है ना, कि अगर किसी ने हमको कहा शांति पर जाके लेक्चर करना है, बाबा ने शांति का ज्ञान पूरा दे दिया, लेकिन शांति का ज्ञान देने के पहले पर्दे के पीछे बैठ के अगर हम सोचे टेबल ऐसा हो, ये ऐसा हो, वे वैसा, पूरी हलचल अंदर से हमारे में, पूरी हलचल, ये फ्लावर पॉट यहाँ रखा है, ये कैंडल यहाँ पे रखी कि नहीं, ये सब करते हुए अंदर से कितना शांत रहते हैं हम, और पर्दा हटता है और फिर हम शांति पर क्लास करवाते हैं, तो क्या वो वाइब्रेशन जाते हैं लोगों को? नहीं जाते। कितने लोग आते हैं फिर सेंटर पर? नहीं आते कोर्स करने, बहुत लोग नहीं आते, क्योंकि कई बार हमसे वो वाइब्रेशन नहीं जाते। तो अगर सेवा में भी जा रहे हैं तो बाबा ने ज्ञान दे चुके हैं कि अंदर से पहले तैयारी होनी चाहिए। बाबा ने इतना भी कहा है कि किस प्रोग्राम में जाओ तो वहां से मनसा सेवा करो, यहाँ से बैठ के पहले। जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है, हमको पता है एक हफ्ते के बाद ये कॉन्फ्रेंस है, अब उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी तो हम करेंगे, स्थूल तैयारी तो हम सब करेंगे, लेकिन अपनी स्टेज की भी तैयारी करनी है ना। तो अपनी स्टेज की तैयारी करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवा में, जैसे कि किसी को सेंटर मिल गया, ठीक है, अब वो सेंटर कैसा चलता है वो सारा उस बहन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सेंटर में योग भट्टी रखते हैं, कैसे मुरली क्लास चलती वहां पे, कैसा वातावरण है वहां का, कितने ज्ञान योग करते हैं वहां के, कैसी पालना मिलती है। तो ये सेवा की जिम्मेदारी तो दे देता है बाबा। अभी गेंद खेलना उस बहन के हाथ में कि दे तो दिया बाबा ने, अब कैसे उसको आगे बढ़ाना ये उनके हाथ में। और कैसी हम दृष्टि रखते, कैसी स्मृति रखते जब हम सेवा में आए। एक एग्जाम्पल है, शांतिवन में दो कुमार आए थे, बहुत सेवा करके जा रहे थे सोने के लिए, तो खाना तो खाना था, तो जब पहुंचे तो पहला कुमार जब पहुंचा तो उसने देखा कि रोटी पूरी टूटी हुई थी, दाल ऐसी ठंडी पड़ी हुई, सब्जी ऐसी पड़ी हुई, तो बहुत चिल्लाया कि क्या है ये, इतना सेवा में आओ भगवान के यज्ञ में और ये मिलता है यहाँ पर आके टूटी हुई, बाबा तू ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, पूरा दिन मैंने सेवा की और आखिरी में आ रहा हूँ तो टूटी हुई रोटी और ऐसा सब पड़ा है। बहुत गुस्सा होके वो चला गया और सोने की कोशिश किया पर उसको नींद नहीं आई। अब दूसरा आया कुमार, वो आता है और देखता है, अरे वाह रोटी टूटी हुई, अरे बाबा तूने दाल भी रखा मेरे लिए, अरे सब्जी भी है, अरे चावल भी है और देखो रोटी टूटी हुई कि मुझे तोड़ने की भी जरूरत नहीं, सारी रोटी टूटी हुई पड़ी। तो वो बहुत अच्छे से खाना खाता है, बाबा को थैंक्स करता है और फिर जाके बहुत अच्छे से सो जाता है। तो कितनी अच्छी गेम खेली उसने, है ना। तो सेवा में हमारी स्मृति कैसे, एक बार एक एग्जाम्पल सुना था क्लास में, एक भाई कोका कोला बेच रहा था। बहुत सेवा में हम कैसी स्मृति कैसे एंजॉय करते हैं, तो वो जब भी कोका कोला की बॉटल खोलता तो ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाता, कुछ करता बहुत स्टाइल में। काम देखो कितना छोटा सा है, उसको सिर्फ बॉटल को खोल के देना है कस्टमर को, लेकिन वो इतना कुछ करने के बाद खोलता और बड़े खुशी से देता। वो हमेशा ऐसा ही करता। तो हमारे पर भी बहुत सारी सेवा की जिम्मेदारी आती है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब हम काम करते हैं ना, 80% लोग आराम करते हैं, 20% वालों पे ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी कभार हम वो 20% में होते हैं, और 20% में जब हम होते हैं तो हम सोचते सारा मुझे ही करना है। अगर डिपार्टमेंट में 3 लोग हैं तो 2 लोग आराम करेंगे, वो 1 व्यक्ति को बहुत करना पड़ता है, उसी का सब कुछ मिस होता है। लेकिन अब हम कैसे लेंगे उस पॉइंट को कि बाबा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना, अगर बाबा ने मुझे इतनी सेवा का चांस दिया है तो क्यों नहीं। अब स्मृति कैसी है, कह रहे वाह सब डॉक्टर्स लीव पर है, सिर्फ मैं ही हूं, कितना सेवा का चांस। ऐसे सोच के अगर मैं करूं तो मेरा दिन भर भी अच्छा जाएगा, अब भले मैं आधा घंटे के लिए भी अगर योग के लिए आऊं शाम को तो बहुत अच्छा होगा, ना कि मैं 4 घंटा और 8 घंटा और 6 घंटा बैठूं और फिर यहां वहां की बातें सोचूं। लेकिन जो दुआओं में कमा लूंगी ना वो 8 घंटे में ड्यूटी करके, तो ये सफल हो जाएगा। तो कैसी स्मृति हम रखते, इसी बात से सेवा में बहुत सारी बातें आती है जो बड़े लोग होते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था, एक बार बहुत वेसल भर के चाशनी बनी थी, गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है, तो एक कुमार आया, उसको लगा पानी है वो, तो उसने सब फेंक दिया, ठीक है, उसने सारा फेंक दिया। और फिर अब ये बात बड़ी दादी को गई कि इसने ऐसे कर दिया, सब गुस्सा होने लगे कि इतना पैसा वेस्ट हो गया ये क्या कर दिया इसने, तो सबको लगा दादी तो अभी इसको चिल्लाएंगी। तो वो कुमार बहुत डर डर के दादी के पास गया, और पता है दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा ठीक है, और दादी ने उसको टोली दी और जाने के लिए कहा। अब देखो दादी को भी पता है ना उससे मिस्टेक हो गई, और उसको रियलाइज हो गई ये बात, अब गेंद दादी के अगर हाथ में है और गेंद दादी को फेंकना है तो कितना अच्छा कर कि टोली देकर दृष्टि देकर जाने को कहा, नहीं तो हम बहुत गुस्सा हो सकते थे, चिल्ला सकते थे, उसको निकाल सकते थे, उसको सेंटर वापस भेज सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कर्म देखो कैसे थे। इसी तरह से बहुत एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हो, कितने ऑपोजिशन आए। एक बार एक एग्जाम्पल है, जब बाबा दृष्टि देखो बाबा की, एक सभा में गए, बड़ी दादी बाबा के साथ गए थे, और वो जो गवर्नर था वहां का वो बहुत चिल्ला रहा था, बहुत गाली दे रहा था, बहुत 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 बुरा बोल रहा था। दादी को ऐसा लग रहा था बाबा क्यों नहीं कुछ बोल रहा उसको, और जब वो लोग बाबा ऐसे खड़े रह के मुस्कुरा रहा था बस। और जब वापस आए तो बड़ी दादी ने कहा कि बस ऐसा सीन लग रहा था कि जैसे कि वो शिशुपाल और कृष्ण का सीन है, वो 100 गालियां देता है ना उसको, बस ऐसा ही लग रहा था, और कृष्ण कैसे मुस्कुराते हुए खड़ा था। तो बाबा और दादी कहते कि हमको अंदर से कुछ हो रहा था, तो बाबा को पूछा दादी ने कि आपने क्यों नहीं कहा कुछ भी, तो बाबा ने क्या कहा कि वो भी तो मेरा बच्चा है ना। तो बाबा की दृष्टि देखो कैसी है, वो भी तो मेरा बच्चा है। तो सेवा में यज्ञ में इतनी बातें आने के बाद भी हमारे कर्म कैसे। ऐसी दादी जानकी को देखो लंदन भेजा बाबा ने सेवा के लिए, दादी बोल सकते थे अब मैं क्या करूं, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, कैसे होगा इतनी विदेश की सेवा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं कैसे करूंगी। लेकिन अगर लंदन जाके देखे तो दादी ने तो वहां पे घर घर में जैसे कि बाबा का घर बना दिया है। विदेशी जब आते हैं तो कैसे कहते हैं, बाबाज होम, बाबाज कार, है ना, उनको देखना कितने प्यार से कहते हैं। तो ये सारी पालना जो है वो दादी ने उनमें भरी। तो ये सारी पॉइंट्स है, तो गेंद हम कैसे खेलेंगे, तो बाजी हमारे हाथ में है। अब हम बच्चे इतने होशियार होते हैं बहुत टाइम पे कि बाबा ने तो गेंद फेंक दी, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, गेंद को वापस फेंकते बाबा के पास, और कहते बाबा योग तो हमने कर लिया, अब आप देख लो क्या करना है। या तो हम कहते बाबा साक्षात्कार करा लो तो फिर करेंगे, बाबा आप उठाना सुबह में, तो बाबा देखो आज मैं बीमार हूँ तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा कम हो गया, बाबा आज ठंडी बहुत है तो मैं शायद अमृत वेला पहुंच नहीं पाऊंगी, बाबा आज बहुत काम है इसलिए शाम के योग के लिए पहुंच नहीं पाऊंगी, तो कितने सारे तो गेंद बाबा ने हमारे पास फेंकी और हम गेंद बाबा के पास फेंकते, तो ऐसे नहीं करना है। गेंद बाबा ने फेंक चुकी, गेंद हमारे हाथ में और बाजी हमारे हाथ में, और बाबा कहता है ये कल्प कल्प की बाजी है, अब हम कैसे इस गेंद को खेलेंगे इस ब्राह्मण जीवन में उससे डिपेंड करेगा कि हमारा भविष्य कैसा है। ठीक है, ओम शांति जी। शॉर्ट में बताएंगे 2009 में ज्ञान में आए, मुंबई से है, हम 7 साल से ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, इसके पहले BSCS हॉस्पिटल में थे मुंबई में, वहीं ज्ञान मिला। वैसे हम मुस्लिम धर्म से हैं, पिताजी कोमा में चले गए थे, तो मुस्लिम्स में कर्मा फिलॉसफी पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते, लेकिन वही हमारे लिए एंट्री पॉइंट था ज्ञान के लिए। फिर आहिस्ते आहिस्ते आगे एक बार दादी जानकी आए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो हमको इंट्रोड्यूस करवाया, हमारा कोर्स नहीं हुआ कभी 7 डेज, तो बस दादी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमसे कहा कि रोज मुरली अटेंड करना बस तुम, और कुछ नहीं करना, तुम किसको नहीं देखना, तुम सिर्फ मुरली रोज अटेंड करना। तो बस उस बात को पकड़ के हम मुरली क्लास में आए और दूसरों को देखते देखते हमारे रंगीन कपड़े भी वाइट हो गए हमारे खुले बाल भी छोटे बन गए, सब कुछ चेंज हो गया।